ओम शांति। हम सभी के बीच में आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पधारे हैं। वैसे तो भाई जी का अगर डिटेल में परिचय देना चाहे तो इतना बड़ा उनका, इतनी विशेषताएं हैं, उनकी डिग्रियां इतनी ज्यादा है, इतने अवार्ड इनको मिले हैं, अगर ये सब सुनाने जाऊंगी तो शायद आपका क्लास का बहुत सारा समय इसी में चला जाएगा। लेकिन कुछ मुख्य बातें आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। भाई साहब 36 साल से बाबा के ज्ञान में है और लगभग 25 वर्षों से बाबा की इस बेहद के घर में अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। दिल वाले बाबा के दिल तक तनिशीन आत्मा है और अनेकों की दिल को अपने आराम पहुंचाया है। कैड के प्रोग्राम द्वारा मेडिटेशन और मेडिकेशन को कैसे कंबाइंड करके दिल की बीमारियों को हम सहज रीति से ठीक कर सकते हैं, दिल की ही बीमारी नहीं बल्कि और भी बीमारियों से हम कैसे मुक्त रह सकते हैं, यह आपने सबको समझाया है। तो अभी हम भाई जी से सुनेंगे रिवाइज और रियलाइज के बारे में। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। आप सभी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं? ऐसे समय में भी जबकि चारों तरफ भयावह स्थिति है, उसमें बाप दादा के घर में आने का चांस मिलना है ना मधुबन में, ये बहुत बड़ा भाग्य है ना। हम सभी क्या अभ्यास करते हैं, क्या अभ्यास करते हैं? राजयोग का अभ्यास करते हैं, प्रजायोग का अभ्यास करते हैं? राजयोग या प्रजायोग, जो समझते हैं हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हाथ उठाओ। पूछा पूछा सीधा सीधा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे पीछे एक भाई ने नहीं उठाया, ठीक नीचे कर। देखिए राजयोग का अभ्यास माना है कि राजयोग माना सतयुग में सिर्फ 108 ही राजा रानी बनेंगे, सतयुग के अंत तक राज पर रॉयल फैमिली में राजा रानी तो नहीं बनेंगे, रॉयल फैमिली सिर्फ 108 की होगी और त्रेता के अंत तक सिर्फ 16108 ही बनेंगे, राइट? त्रेता के अंत तक 16108 ही बनेंगे। तो कहां तक आना, किसमें आना पड़ेगा, किसमें आना, त्रेता के अंत तक भी राजा रानी बनेंगे तो किसमें आना पड़ेगा, हैं जी? 16108 में आना पड़ेगा। 16108 का मतलब ये नहीं है वो सत्युग, 16000 जो होते हैं सत्युग में तो आते हैं क्योंकि तो राजा रानी जाके त्रेता में बनना शुरू करते हैं, और 16000 आत्माएं भी सत्युग में तो जरूर आती है किंतु तो उसमें राजा रानी नहीं बनती है, रॉयल फैमिली के दूर के कनेक्शन में रहते हैं किंतु तो फिर वो आत्माएं त्रेता में आकर के उनको राजा रानी का पद मिलता है। कई बार भाई बहनों को पता नहीं होता, नहीं वो तो आएंगे त्रेता में, ऐसा नहीं है ना, आती सतयुग में ही है क्योंकि 9 लाख से ऊपर है ना, 9,16,108 कहते हैं ना, तो 8 है फिर पैदल शिव बाबा है, फिर 8 है फिर युगल दाना है, फिर 8 है फिर उसके बाद 100 है, 100 के बाद 16,000 है, उसके बाद प्रजा है 9 लाख, फिर आगे है। तो हमको ये समझना है कि हम, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य से राजयोग कर रहे हैं। जब तक हमें लक्ष्य क्लियर नहीं होता है तब तक हम क्या अचीव करना चाहते हैं हमें ये क्लियर नहीं है, तब तक हम उसके लिए उतना अभ्यास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 16108 में आने वाले जरा हाथ उठाओ, जरा देखे कौन कौन हाथ उठाता, हाथ उठा, श्रमाओ नहीं श्रमाओ। अभी आपने कहा राजयोग का अभ्यास करें, प्रजायोग का अभ्यास नहीं करें, उठाओ उठाओ, बस ये तो 30-40% ही हुए ना, मतलब बाकी लोग प्रजायोग का अभ्यास कर रहे हैं, बाकी तो सारी प्रजा बनेगी ना, सत्यु की प्रजा या त्रेता की प्रजा बनेगी, राइट? तो पहला शब्द तो पहला तो स्टेट पहला हाथ तो गलत हो गया, नहीं हो गया गलत, क्या ख्याल है, गलत हुआ ठीक हुआ, बोले मैं क्लास कराने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बातचीत करने के लिए आया, क्लास कराने का समय तो खत्म हो गया। भगवान कहता है अभी बाबा की एक मुरली थी पीछे, अभी व्यास नहीं बनो। व्यास ने क्या किया, सुनना सुनाना किया ना, लिखा और सुनना सुनाना वर्णन किया। अभी व्यास नहीं बनना है, अभी अभ्यास करके अनुभव की अथॉरिटी बनो। क्या करना है, व्यास नहीं बनना। सुनने सुनाने से कुछ फायदा होता है क्या, कुछ फायदा नहीं होता। सुनने सुनाने वाले प्रजा बनते हैं, सुनने सुनाने वाले क्या बनते हैं, प्रजा। जो अभ्यास करते हैं दिन रात, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वासोश्वास अभ्यास करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, वो राजा रानी बनते हैं, राइट। एक गायन करने वाले होते हैं, एक पूजनीय होते हैं। तो जो वर्णन करने वाले कौन हुए, गायन करने वाले हुए ना वो तो, और पूजनीय क्या कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, जो अनुभव की अथॉरिटी, जिनकी नयन नयन मस्तक, आज की मुरली में भी था ना, मस्तक क्या दिखाए, नयन क्या दिखाए, है ना, मुख क्या दिखाए, चेहरा क्या दिखाए, हस्त क्या दिखाए, पैर क्या दिखाए, नहीं था ना आज की मुरली में, तो वो क्या दिखाई देना चाहिए हमारे मस्तक से, आंखों से क्या दिखाई देना चाहिए, नैनों से, नाक से क्या दिखाई देना चाहिए, कानों से क्या क्या चीज अंदर जाए क्या नहीं जाए, मुख से कौन से बोल निकलने चाहिए, हाथ हमारे कहां किस कार्य में हो, पैर किस कार्य की तरफ जा रहे हो, ना तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है, व्यास बनना है कि व्यास बनना है कि अभ्यास करना है, बोलो व्यास बनना है। एक बार बाबा की एक मुरली सी मुझे याद आ रही है कि बाबा ने कहा था महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे में क्या फर्क है, क्या फर्क है बोलो, बताइए। महारथी किसे कहते हैं, घोड़ेसवार किसे कहते हैं और प्यादा किसे कहते हैं, बोले बोले हैं जी। महारथी जो है उच्च पद पर कहते किसे हैं, महारथी किसे कहते, वेरी गुड। और बाबा ने आपने ठीक बताया, महारथी वो होते हैं जिनका मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, वो स्वराज्य अधिकारी होते हैं, जिनका तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर अधिकार रहता है, मन पर भी, बुद्धि पर भी और संस्कारों पर भी, और पांचों कर्मेंद्रियां जिनके कंट्रोल में होती हैं, आंख नाक कान मुख और ये त्वचा जो है ना ऊपर हमारी त्वचा सारे शरीर में फैली है ऊपर से नीचे तक, तो ये जो पांचों कर्मेंद्रियां उनके कंट्रोल में है, ये नहीं कि आंख ने जो चाहे देख लिया, कान में जो जो चाहे सुन लिया, जो चाहे खा लिया, जो चाहे बोल दिया, जो चाहे सूंघ लिया, है ना, या जो चाहे छू लिया, है ना, राइट। वो महारथी नहीं बन सकते, मन में जो चाहे संकल्प आ गए, बुद्धि ने जो चाहे निर्णय दे दिया, लगाव झुकाव टकराव के वश ये व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व ठीक ही नहीं है, उसके प्रति नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव व्यवहार कर दिया, ये व्यक्तित्व उससे लगाव हो गया, उसके प्रति उसकी गलत बात भी ठीक है और टकराव उसकी अच्छी बात भी खराब है ना, बुद्धि भ्रमित है ना, भ्रष्ट बुद्धि हो गया ना, नहीं मन क्या हो गया, मन चंचल हो गया, भटकती बुद्धि, तीन चीज ब्राह्मणों को परेशान करती है, कौन सी चीजें, भटकती बुद्धि, चंचल मन और तीसरा पुराने संस्कार, मध्यकाल के संस्कार, जो काम क्रोध लोभ अहंकार के संस्कार पड़ गए ना, आलस्य अलबेलेपन के संस्कार बन गए, दूसरों के अवगुण देखते अपने नहीं देखते हैं, उसके अंदर एक खराबी, उसके अंदर एक खराबी, उसके चिंतन उसी का चलता है, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, इसने ऐसा किया होगा, ये ऐसा करता होगा, वैसे अंदाजे लगाते रहते हैं अपने आप, चिंता के संस्कार, भय के संस्कार, है ना, जल्दीबाजी के संस्कार, मैंने कहा काम ऐसे ही होना चाहिए, मैं ही ठीक सोचता हूँ, इनको तो समझ ही नहीं है ना, मेरी चीज है ना ये, मेरी चीज ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसे, मेरा सेंटर ऐसा, मेरी ये चीज ऐसी, मेरी चीज ऐसी, मैंने जैसे कहा ऐसा होना चाहिए। जल्दीबाजी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। कंपटीशन कंपैरिजन, कंपटीशन कंपैरिजन कौन करते हैं बताओ? कंपटीशन कंपैरिजन कौन करते हैं? बोले छोटे बच्चे जो होते हैं ना कंपटीशन, उसको दिया मेरे को भी चाहिए है ना, उसको ज्यादा दिया मेरे को कम दिया है ना। नहीं, बच्चे क्या करते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जरा भी मतलब कोई दूसरे को मिलेगी मेरे को भी चाहिए, ये बच्चों की क्वालिटी है ना, कंपटीशन क्वालिटी कंपैरिजन करना। हम बच्चे हैं क्या? बाप के बच्चे हैं किंतु सबसे ज्यादा मेच्योर हम ही है ना दुनिया में, पूर्वज हैं सबके ना, पूज्य है ना, पूजनीय है ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। जो तो ये जो है घोड़े सवार कौन होते हैं? जो मन, जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता है, मन रूपी घोड़े पे सवार रहते हैं। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा कभी आप किसी ने देखा सोता हुआ जमीन पे सोता हुआ देखा है? घोड़ा कभी बैठा हुआ देखा घोड़े को आपने? कभी किसने देखा घोड़े को बैठा हुआ जमीन पे बैठा हुआ? किसने देखा घोड़े पे जमीन पे बैठा हुआ? गिरा हुआ तो होता है, गिरा हुआ माना जब उसके पैर में जब वो कीले डालते ना, पैरों में लगाते ना, तो कील ठोकते ना पैर में ताकि वो दौड़ सके, वो लिटा, जबरदस्ती लिटाना पड़ता है उसको है ना, बेहोश करना पड़ता है। किंतु वैसे तो देखा किसी ने? तो मन ऐसा घोड़ा है जो सोते समय भी खड़ा ही रहता है। घोड़ा जो सोते समय भी खड़ा खड़ा ही सोता है ना। तो इसलिए कहते हैं घोड़े बेच के सो जाओ है ना। क्या बोलते हैं? हाथी बेच के बोलते हैं क्या? गाय बेच के बोलते हैं कि गाय बेच के सो जाओ? घोड़ा बेच के सो जाओ माना क्या? ये जो हमारे विचार है ना, इनको बेच दो माना बंद कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, तब नींद आती, नहीं तो नींद नहीं आती। घोड़े अगर घोड़े दौड़ते रहे तो क्या होता है? विचार रूपी घोड़े दौड़ते नींद नहीं आती ना फिर तो ना, राइट? तो ये जो है, तो जिनका घोड़ा, मन रूपी घोड़ा क्या है? कंट्रोल में नहीं रहता है। पुरानी संस्कार, पुराना स्वभाव जो मन में होता है ना, पुरानी आदतें जो होती हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, क्योंकि कर्मेंद्रियां मन के थ्रू काम करती है ना, तो उसके विषय चंचल रहते हैं। और प्यादे क्या होते हैं? प्यादे का मन पर, प्यादे का हालत तो ये होती है, वो ना जीभ कंट्रोल में है, ना आंख कंट्रोल में है, ना कान कंट्रोल में, ना मुंह कंट्रोल में। कभी मुंह कहता है इधर को चलो, वो जो वहां आइसक्रीम मिलती है वहां खाओ, आंख कहती है वो देख के आओ, चलो वहां देखने चलते हैं, अभी आज वो सीन देख के आते हैं, आज वो देखते हैं। कान सुनता है, अरे आज वो गीत बजाओ ना उसका, मोहम्मद रफी का गीत बजाओ है ना, आज उसका गीत बजाओ, आज उस भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया था, वो सुनते हैं, आज उसको बात करते फोन, उसकी आवाज, उसके बाद सुनता हूँ चैन पड़ जाते हैं, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ चैन पड़ जाती है अंदर, बहुत दिन से उसकी आवाज नहीं सुनी नहीं। तो ये प्यादे होते हैं। क्या बनना है आपको? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, पर उतना पैसा डालना पड़ेगा ना। थ्री टायर स्लीपर में जाना है, सेकंड एसी, थ्री टायर स्लीपर होता है ना, एक होता है थ्री टायर एसी, एक टू टायर एसी होता है ना, और एक होता है फर्स्ट क्लास एसी। कौन सी टिकट, कौन सी किस में जाना है? पैसे अलग अलग है। फर्स्ट क्लास थ्री टायर स्लीपर में जाओगे ना, खुली हवा आती है ना, उसमें तो आपके पैसे कितने, 300 रुपए की टिकट आती है हिसार तक की, 300 350 की आती है शायद अभी तक, 350 की आती है ना, 400 की आती है थ्री टायर स्लीपर की। और थ्री टायर एसी वाला स्लीपर जो होता है उसकी लो तो 1,500-2,000 की टिकट आएगी, और टू टायर स्लीपर की अगर राजधानी से लोगे तो कितनी आएगी, 2,500-3,000 की आएगी। और वो लोग ना फर्स्ट क्लास एसी 4,000 से ऊपर की आती है, 4,300-4,500 रुपए की आती है। उतने पैसे तो डालने पड़ेंगे ना, नहीं डालने पड़ेंगे, मतलब उतना तो पुरुषार्थ करना पड़े, नहीं करना पड़े। बाबा ने कहा था एक बार, विजय का झंडा मस्तक में ना, मस्तक में विजय का झंडा लहराता है ना, तो बाबा ने एक बार कहा था महारथी, प्यादे, घोड़े सवार और प्यादे, वो जो है उसमें से जो महारथी थे ना, बाबा एक बार देख रहे थे बच्चों को, तो बाबा ने कहा महारथी के मस्तक में तो विजय का झंडा लहरा रहा था, मतलब स्मृति का विजय का झंडा, स्मृति स्वरूप स्थिति का झंडा, स्मृति स्वरूप थे, मतलब वो खाली ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप थे, स्मृति का झंडा, निश्चय की झलक, निश्चय की फलक और खुशी की झलक उनके मस्तक में क्या था, निश्चय की फलक, तेज है ना, निश्चय की फलक, और आंखों में खुशी, चेहरे पर खुशी की फलक, खुशी की झलक है ना, उससे उनका झंडा लहरा रहा था, विजय का झंडा, स्मृति स्वरूप का झंडा वो सदा लहरा रहा था, बाबा देख रहे थे बच्चों को। और जो घोड़े सवार थे ना, उसकी क्या प्रॉब्लम थी, निश्चय का जो झंडा था, जो मस्तक पे स्मृति स्वरूप का झंडा, कभी कभी लहरा था, कभी कभी नहीं लहराता था, जैसे होता ना कभी कभी झंडा होता, कभी लहराता कभी नहीं लहराता, क्यों नहीं लहराता झंडा, हवा चले तो लहराता है ना, और हवा नहीं चले तो खड़ा हो जाता है ना, तो निश्चय की रस्सी जो थी ना, मतलब वो निश्चय की, मतलब निश्चय का निश्चय तो था, निश्चय की फलक होती ना, मैं बाबा का हूं, जिसने सर्व से सर्व संबंध बाप से अनुभव किए हुए ना, एक एक ज्ञान के पॉइंट का एक एक उसका अनुभव किया हुआ है, अथॉरिटी बना हुआ है, वो तो मतलब जो है उसका सराई महारथी है ना वो तो है ना। और जो मतलब जो है हम लोग खाली सुनते सुनाते हैं तो क्या होता है, कभी तो निश्चय की फलक रहती है, कभी कभी निश्चय की फलक की हवा कम हो जाती है ना, खुशी की झलक कम हो जाती है ना, तो क्या हवा रुक जाती है तो क्या होगा, झंडा खड़ा हो जाता है। अब चेक करो आप, झंडा लहरा रहा है कि नहीं, निश्चय की फलक और खुशी की झलक लहरा रहा है नहीं लहरा रहा, बीच में खड़ा हो रहा है, निश्चय किस पे, स्व पे निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, परिवार दोनों में, खाली अलौकिक परिवार में नहीं, लौकिक परिवार में भी निश्चय, अलौकिक परिवार में भी निश्चय, क्योंकि लौकिक परिवार में जो भी है आपके ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं वो भी दैवी कुल की आत्माएं, आपके संबंध में कोई ऐसा आ ही नहीं सकता जो जिसके आप पैदा हुए, जो आपका भाई है बहन है वो दैवी कुल में नहीं आए, ये बाबा की एक मुरली में था। और संपर्क में आने वाली आत्माएं भी जो आपके साथ बिजनेस करती हैं, कुछ भी करती हैं, वो आत्माएं भी द्वापर के, द्वापर कलयुग में भक्त आत्माएं बनेंगी, वो भी 33 करोड़ में आएंगी। आपका संपर्क ऐसी किसी आत्मा से हो ही नहीं सकता जो जो दैवी कुल की आत्मा ना हो, ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के जिनको महीनता आती है ना वही महान बन सकते हैं, जो ज्ञान की महीनता में नहीं जाते वो महान नहीं बन सकते, मोटा मोटा ज्ञान समझते हैं ना तो मोटा मोटा ही काम, मोटा मोटा ही पद मिलता है उनको, मोटा मोटा माना झाड़ू लगाने का, सफाई करने का, कल की मुरली में था ना, है ना, था ना शुरू शुरू में क्या लगाना है, कौन से बच्चे झाड़ू लगाएंगे, कौन से बच्चे सपूत बच्चे क्या करेंगे, कपूत बच्चे क्या करेंगे, और मानदार बच्चे, मानबरदार बच्चे क्या करेंगे, और नाम मानने वाले बच्चे क्या करेंगे, था ना क्वेश्चन आंसर में था ना, बाद में तो एक्सप्लेनेशन थी, तो क्या समझ में आई, तो और प्यादे का क्या हालत थी, प्यादे की निश्चय की रस्सी थी ना, जो निश्चय की रस्सी थी ना और खुशी की झलक थी, वो निश्चय की रस्सी में क्या था, गांठ थी, गांठ होती थी, अगर झंडे में गांठ पड़ जाए तो क्या होता है, गांठ खुलती नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो गांठ खुलती है क्या, झंडा लहराने जाओ तो लहराता ही नहीं झंडा, है ना, तो प्यादे के मतलब कमजोरी की गांठ थी, उसके उसके स्वभाव संस्कार में कमजोरी की गांठ थी, इसे निश्चय निश्चय नहीं बनता था, कभी सौ पे हो गया संशय हो गया, कभी बाप पे संशय हो गया, कभी ड्रामा, मेरे साथ ही होता है क्या सब कुछ, ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है ना, इनके साथ तो कुछ भी नहीं होता, ये देखो कुछ गलत काम करते तो भी कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो सब कुछ होता है, सब मेरे को ही बोलते हैं, कभी ड्रामा पे निश्चय नहीं रहता, कभी कभी किस पे निश्चय रहता, कभी परिवार पे निश्चय, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार निश्चय रहता, क्या लौकिक परिवार पे, अरे मेरे को ये देखो, कैसे देखो, कैसे मेरा बेटा है, देखो ये कैसे, देखो कौन मिला है, देखो क्या क्या, देखो मेरे भाग्य में क्या मिल गया है। निश्चय नहीं होता है। कभी अलौकिक परिवार में देखो यहाँ पे तो ये होता है, देखो 40 साल वाला भी ऐसे कर रहा है, 30 साल वाला भी देखो ऐसे कर रहा है। मैं तो अभी भी दो साल से तो आया मैं ज्ञान में, तो निश्चय नहीं होता है ना। कभी संबंध वालों के ऊपर, कभी संपर्क वालों के ऊपर, राइट? तो क्या करना है बताओ। और महावीर कौन से बच्चे होते हैं बताओ, चलो चार तरह के हो ना, महावीर, महारथी और घोड़ेसवार और प्यादे। चलो आप सोचेंगे हम तो पेपर, मैं पेपर लेने नहीं आया हूं, पूछ रहा हूं। बोलिए, यस, वो सदा विजयी होते हैं। महारथी कभी कभी हार सकता है ना, मन बुद्धि संस्कार पर कभी कभी कहीं ना कहीं बड़ी माया आ जाए तो कहीं ना कहीं किसी पुराने संस्कार के वश, पुराने स्वभाव के वश, कहीं ना कहीं किसी से मोह हल्का सा, उल्लास हल्का सा, कहीं ना कहीं तूफान आ गया। हवा से कुछ नहीं होता उनको, तूफान आ गया बहुत भारी है ना, पांचों तत्व इकट्ठे आ गए मिलकर के, है ना, पांचों विकार इकट्ठे आ गए, तो वो फिर जो महारथी महावीर जो है ना, वहां उखाड़ता है। ऐसे महावीर सिर्फ आठ ही बनते हैं। कितने बनते हैं सिर्फ, कितने बनते हैं सिर्फ आठ ही महावीर हैं, जो कभी नहीं हारते, जो कभी सजा नहीं खाते हैं, सदा बाप दादा के साथ रहते हैं, बाप समान। सो भी कभी कभी महारथी के रूप में कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी घोड़ेसवार 16,000 वाले भी कभी कभी है ना, वो भी राजा हैं, महारथी ही होते हैं। किंतु बाकी जो घोड़ेसवार, जो बाकी कौन है, साहूकार, बाकी प्रजा, ठीक है। अभी आप सोचना क्या करना है, अभी ऊपर चले जाओ सबके साथ, उड़ जाओ। शांति। अभी हमारा एग्जाम कब है, एग्जाम कभी होने वाला है? एग्जाम कितने दिन बाकी है अभी? हैं जी, कल है परसों है, अचानक उसमें अचानक आने में कितना टाइम बाकी है जी? 10 मिनट है जी, हर सेकेंड एग्जाम। देखिए, बाबा ने, आपने बार बार मुरली में सुना होगा कि अंतिम कोर्स कौन सा होगा, क्या होगा अंतिम कोर्स, है जी? नष्ट मोह स्मृति लब्धा, वो तो पेपर है, कोर्स। अंतिम कोर्स बाबा ने कई बार मुरली में सुना होगा, रिवाइज एंड रियलाइज, रियलाइजेशन कोर्स। क्या था? रियलाइजेशन कोर्स, है ना, रिवाइज एंड रियलाइज, ये लास्ट का कोर्स है, ये कोर्स का कोर्स है। कौन सा कोर्स है? एग्जाम के पहले क्या होता है ना, आपको पता, समरी मिलती है ना, वो क्या मिलते हो ना, छोटे छोटे कुंजियां जैसे मिलती है ना एग्जाम के पहले कुंजियां मिलती है ना, कुछ जिसमें मेन इसका कारण ये, इसका आंसर ये, इसकी लाभ ये। किताब में तो पूरा टेक्स्ट होता है, इतनी मोटी किताब होती है ना, एक गाइड होती है बाद में ना, छोटी सी गाइड होती है, सार रूप में होती है। इलस्ट्रेटेड किताबें भी आती, छोटी छोटी किताबें आती हैं, इतनी मोटी किताब, 2000 पेज की किताब, उसकी किताब जो होगी ना सार रूप में जो होगी ना, वो इतनी सी होगी, 100 पेज की, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं ना, एमबीबीएस में एग्जाम होता है, एमडी में वाइवा होता है, शायद और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में भी वाइवा होता होगा, तो उसकी उस पढ़ के जाते हैं, इसका कॉज क्या, उसका कॉज क्या, उसका अच्छा इसके 10 कारण बताओ, इसके 5 कारण बताओ, है ना, होता है ना ऐसे एग्जाम में होता है, जो जो प्रोफेशनल कोर्स में नए उनको पता हो। तो वो जो है अभी जो है रियलाइजेशन कोर्स लास्ट का है। हमारा कोर्स में कितना कितने सब्जेक्ट है हमारे, 4, ज्ञान योग धारणा सेवा। किताबें कितनी है हमारी, मुरली कितनी है हमारी, 5 साल की तो साकार मुरलियां हैं, ठीक है, 63 से लेके 69 जनवरी तक की मुरली है ना, ये तो हमारी 5 साल की तो साकार मुरलियां जो रिवाइज होती रहती है, वही बहुत बड़ी है, वही मतलब अब देखो तो अभी तक भी अभी तक लगती नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप भी नहीं बने हैं। युधिष्ठिर को एक 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 लाइन याद करने में कितना समय लगा था, गुरु द्रोण ने बोला बेटा ये कल सुनाना कि कभी भी सदा सत्य बोलना है, सबने सुना दिया, उसने नहीं सुनाया, उसने कहा क्या तुम याद नहीं किया, कहता नहीं सर अभी याद नहीं हुआ, फिर उसने कहा गुरुजी याद नहीं, फिर दूसरे दिन पूछा याद हो गया, कहता नहीं अभी याद नहीं हुआ गुरुजी, तीसरे दिन पूछा नहीं, उसको हफ्ता लग गया, क्या तुझे आज एक हफ्ता कैसे लग गया याद करने में, कहता मैं गुरुजी मैं थोड़ा सा झूठ बोलता था ना, झूठ असत्य हो जाता था बीच में, असत्य हो जाता था, अब जो है आज 7 दिन के बाद परफेक्शन आई है कि मैंने कल पूरा दिन 24 घंटे में कोई कोई असत्य किया ही नहीं, असत्य ना बोला ना देखा ना सुना ना किया खाया, असत्य कुछ हुआ ही नहीं, पहला दिन है तो मैं कैसे बोल दूं कि सत्य सदा सत्य बोलना है, कि सदा सत्य रहना है, वर्ड था सदा सत्य रहना है, सत्य बनना है ना, सत्य रहना बोलना नहीं सत्य रहना है, सत्य बनना है, तो सदा सत्य तो बना ही नहीं था मैं, तो ये सदा सत्य ये बोलना और फिर बनना कितना फर्क है बताओ, कितना फर्क है बोल, हमें मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और सिस्टर रूपी ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हुआ, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, ये क्या है, हाँ ये क्या है, सिर्फ बोलना ABCD क्या है, ABCD है ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, ये क्या है, मुरली क्या है, आज की मुरली पढ़ी ना, कितनी बार पढ़ी अभी तक, अभी तक कितनी बार पढ़ी बताओ, जिन्होंने 5 बार पढ़ ली अभी तक हाथ उठाओ, मेरी तो 5 बार हो गई अभी, लव लेटर कहां रखते हैं बताओ, दिल के पास ना, दिल के पास रखते हैं, और पढ़ते कब हैं, पब्लिक में दिखा के पढ़ते हैं क्या, कब पढ़ते हैं बताओ, जहां एकांत मिलता है कोई दिखाई नहीं देता तुरंत लेटर हाथ में निकल आता है, और यूं छुपा के पढ़ते हैं, दिखा के पढ़ते हैं छुपा के पढ़ते हैं, हैं हैं छुपा के पढ़ते हैं ना, और नजर वहां रहती है दूसरे पर, कोई आ तो नहीं रहा, एक लाइन पढ़ेंगे सामने से कोई आ रहा है तुरंत छुपा लेते हैं, और जब तक वो रहे तब तक उसी का उसी के उस रस में खोए रहते हैं, ये लाइन कही मेरे साजन ने मेरे लिए ये कहा, मेरे प्रेमी ने मेरे लिए ये कहा, दूसरे तो कहते तुम तो काले भूत हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, वो कहता तुम तो चांद जैसी हो ना, तो क्या हो ना, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हारी सीरत भी सुंदर है सूरत भी सुंदर है ना, तुम्हारे जैसे धरती पे कोई है ही नहीं, बाकी तो कहते तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, तुम तो बेकार आदमी हो ना, तो बाबा की मुरली क्या है बेसिकली, लव लेटर है ना, तो बाबा की मुरली का इस तरह से गहराई से अनुभव करना, और कोर्स हमारा कितने साल का है, 5 साल वो और 48 साल कितने हो गए, 31 दिसंबर 2017 तक कितने साल हो गए, 48 साल की अव्यक्त मुरलियां, कितना बड़ा कोर्स है, तो आप सबने रिवाइज कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया हर मुरली रिवाइज कर ली, रियलाइज कर ली, कर ली हाथ उठाओ, हर मुरली रिवाइज कर ली, जिसने एक बार कम से कम हर मुरली रिवाइज कर ली, 48 साल की मुरलियां जिनकी रिवाइज हो गई हैं हाथ उठाओ, एक ने हाथ उठाया, वेरी गुड, बढ़िया। रियलाइज कितने की? साकार मुरली जैसे सारी रिवाइज कर ली, हाथ उठाओ। एक दिन में एक मुरली कम से कम 12 बार रिवाइज करनी होती है, उसे बोलते रिवाइज, है ना। आशिक माशुक वाला प्यार कैसा होता है? कैसा होता है? लव लेटर बताया ना मैंने, लव लेटर कैसा होता है? कितनी बार पढ़ते हैं लव लेटर बताओ? कितनी बार पढ़ते हैं? किसने प्यार किया नहीं लगता है? भगवान से भी प्यार करके देखा नहीं है ना? हमने दादियों को देखा है, दादियां कैसे, दादी बड़ी दादी जाती थी, सबसे पहले मुरली रखवाती थी, उसका बैग है ना दादी का, जो एक बैग दादी के साथ रखते थे, दादी नहीं उठाती थी पर मुन्नी बहन उठाएगी या कोई और उठाता था, तो दादी उसमें सबसे पहले लेट मुरली, कुछ और जो हो नहीं हो, मुरली पहले रखो, मुरली रखो, रखी मुरली, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 5 दिन के लिए, पहले 5 दिन की मुरली रखो। तब तो मोबाइल में मुरली नहीं आती थी, कुछ और हो नहीं हो, मुरली पहले आनी चाहिए उसके अंदर, बैग के अंदर, वो बैग दादी के पास ही होना चाहिए। तो दादी बैठी है तो प्लेन में बैठी है दादी, मैं तो जाता प्लेन में दादी के साथ बहुत बार गया हूँ, तो दादी के साथ ही बैठना होता था, कार में भी दादी के साथ, जब दादी ऊपर माउंट आबू जाएगी तो दादी फिर पहले मुरली, मुरली रखी, आज की मुरली रखी, शाम को दादी को वापस आना है या एक दो दिन जाना है, 2 दिन की मुरली रखी, मुरली रखी 2-3 बार तो पूछ ही लेती थी पहले। तो मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। बाबा से लोग मिलने आते थे, बहने मिलने आती थी, और कई बार बाबा से तैयार होकर सीधी बाबा के पास चली जाती, बाबा पहली बात यही पूछते थे, आज की मुरली पढ़ी सुनी? नहीं बाबा, मैं तो आपसे मिलने चले, जॉब वापस जाओ, पहले मुरली पढ़ के। ऐसा किनका नियम है जो नाश्ता करने के पहले कुछ भी, मतलब मुरली सुनने के पहले कुछ भी खाते नहीं, ऐसा नियम किनका है बताओ? तो पांच छह सात है ना, 7 8 9 आधा आधा आधा, थोड़ा एक दो लाइन पढ़ लेते फिर खाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे नियम बनाओ ना कि मुख में कुछ जाए नहीं बिना मुरली के, पहले आत्मा का भोजन मिल जाए फिर शरीर को भोजन देना, पहले ड्राइवर को भोजन मिले तभी तो गाड़ी में पेट्रोल डाले, आत्मा आत्मा का तो शरीर, ड्राइवर ने तो खाना खाया नहीं, पेट्रोल डलाने चला गया सड़क में ना, गाड़ी में ना, तो क्या ख्याल है? आज के बाद एग्जाम एग्जाम आ गया क्या, अभी आना बाकी है? कोरोना कोरोना ने क्या सिखाया आपको? आपको अगर कोरोना हो जाए, वैसे तो नहीं होना चाहिए किसी को भी, टच वुड, पर किसी को हो जाए, आप देख सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, कोई अलाउड नहीं है उसके पास, उसका माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, कोई अलाउड है क्या? कितना ही प्यारा हो, अलाउड है? मरने के बाद कोई अलाउड है? अलाउड है? तो क्या क्या कौन सा एग्जाम आ गया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नहीं आ गया? कब आएगा? आया नहीं, अभी नहीं आया, आया कि नहीं आया? कौन सी दवाई सक्सेसफुल है बताओ कोरोना के अंदर? कौन सी दवाई सक्सेसफुल है? मलेरिया की दवाई सक्सेसफुल है? क्लोरोक्विन सक्सेसफुल है? नहीं सक्सेसफुल है। कीड़े की दवाई, पेट के कीड़े मारने की दवाई आइवरमेक्टिन दे रहे हैं, सक्सेसफुल है? नहीं सक्सेसफुल है। बैक्टीरिया की दवाई डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रल सक्सेसफुल है? नहीं सक्सेसफुल है। वायरस की दवाई सक्सेसफुल है? नहीं सक्सेसफुल है। मल्टीविटामिन काढ़ा कोई प्रूफ नहीं है, है ना? कोई प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं है। अपनी शुगर ठीक रखो, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखो, अपना यूरिक एसिड ठीक रखो, ये ठीक रखो, ये ठीक रखो, मन में नेगेटिव विचार मत आने दो। इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक दवाई है सिर्फ। अगर आपकी इम्यूनिटी है, आपके पास रोग प्रतिरोधक शक्ति है, तो आप ठीक हो, अदरवाइज आपको कभी भी कोरोना हो सकता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति है तो कोरोना के बीच में से जाके आ जाओ, बिना मास्क के भी आ जाओ, पर ऐसा नहीं करना, मास्क पहन के जाना है ना। अभी मास्क लगा लो अच्छा रहेगा ना। और नाक तक नहीं लगाओ, यहां तक लगाओ है ना, यहां तक लगाना चाहिए हमेशा ना। मैं बहुत दूर हूं इसलिए मेरे से कोरोना आपको लगेगा नहीं, हमेशा लगा के रखो ना। कई कम्युनिटी में सोते हो अगर ऐसे रूम में जहां पर चार पांच लोग सो रहे हैं तो सोते भी लगा के रखो, कूलर चल रहा है एसी चल रहा है तो जरूरी है लगाना, क्योंकि एक को है दूसरे का कोरोना अपने आप ही आपको उस हवा के प्रेशर से उधर चला जाएगा। ठीक है, मैं कोरोना पे क्लास में नहीं आया हूं पर बता रहा हूं, क्योंकि कोरोना हमको सिखा रहा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना। और एक ही इलाज है, सबसे बड़ी इम्यूनिटी क्या है अभी जिस पर रिसर्च हुई है, सबसे बड़ी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कहां किस चीज से बढ़ती है, स्नेह रहम और करुणा, स्नेह रहम और करुणा, सच्चा स्नेह, जो आज की मुरली में था निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ प्रेम, रहम सब पे रहम, रहम दिल जो बाप का गुण है, करुणा जो बाप का गुण है, तो वो गुण हमें धारण करना है, वो बिना पवित्रता के आ नहीं सकता है। एक बाप से कंबाइंड स्थिति वही, क्योंकि बाप के गुण है तीनों, स्नेह रहम और करुणा, तीनों गुण बाप के हैं, अगर वो आपके अंदर है तो आप सच्ची दिल से, अगर भले मैंने कितना मर्जी बड़ा बैच लगाया हो, कितने सफेद कपड़े एकदम बढ़िया वाले पहने हो है ना, महंगे वाले पहने हो, इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं है। मैं कितना समय गुप्त है, ये सब गुप्त है, कोई दिखाने की चीज नहीं है, मुस्कुराने की बात भी नहीं है कि मैं कितना मुस्कुरा रहा हूं, ये गुप्त की गुप्त है। कितना मेरा श्वासों श्वास, जो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था, श्वासों श्वास हर सेकंड में बाप से कंबाइंड था, और हर श्वास हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क शिव बाबा की श्रीमत पे कर रहा था, उसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, सैंपल नहीं था उसके सामने, तो भी वो नंबर वन बन के दिख रहा है। तो रिवाइज और रियलाइज का अर्थ है, जैसे मुरली है ना बाबा की, आज की मुरली है, अब इस मुरली को हमें क्या करना है, रिवाइज करो, एक एक लाइन को रिवाइज करो है ना, और उसको अनुभव करो, अनुभव। अब से योग क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य। योग क्या है, कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य क्या है, सत्य सदा अविनाशी है, ना उसका जन्म होता है ना मरण होता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर है। और दूसरा, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, सत्य जैसा है वैसा ही रहता है, असत्य परिवर्तन होता है, और असत्य मरता भी है और पैदा भी होता है। आत्मा गर्भ में पांचवें महीने में प्रवेश करती है, पांच महीने पूरे होने के बाद, 20 हफ्ते के गर्भ के बाद, और फिर जब छोड़ के जाती है तो शरीर एकदम डेड हो जाता है, इसलिए कहते हैं देहांत, देह का अंत हो गया, देह का जन्म हुआ है ना। तो आत्मा पांचवें महीने के पहले बच्चा अगर गिर जाए तो उसको अबॉर्शन कहते हैं, और पांच महीने के बाद गिरे तो उसको प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। उसको हम उसमें रख करके, मशीन में रख के, इंक्यूबेटर में रख के, खाना पीना दे के, उसको नरिशमेंट दे के, उसको हम जिंदा बच्चा बना सकते हैं आत्मा के प्रवेश के बाद, राइट। तो सत्य जो है, ये है कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य पहले तो आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, परम सत्य है वो तो, और आत्मा परमात्मा के संबंध सदा ही है वो भी, सत्य त्रेता में भी है, बाबा हमारे संस्कारों में समाया है, सत्य त्रेता में वैसे स्थूल में साथ नहीं, पर किंतु हमारे हमारे संस्कारों में समा गया है बाबा, बाबा के गुणों का हम स्वरूप बन गए, और सदा ही है वो हमारा साथ, कंबाइंड है हर समय, द्वापर कलयुग में भी है, उसके लिए हम भक्ति करते हैं, उसको अनुभव करने की खोज करते हैं, तो संबंध हमारे सदा ही सत्य है परमात्मा के साथ, और ड्रामा भी सदा सत्य है, जो कर्म एक बार आपने कर दिया वो कभी माफ नहीं होता है। हम कहते हैं योग से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, विनाश हो जाते हैं क्या, बोलो विनाश होते हैं क्या, मैंने आज कल किसी को 100 साल पहले किसी को दुख दिया था, एक गाली दी थी, अब वो गाली मुझे नहीं मिलेगी क्या? मैं बहुत योग कर रहा हूं, मिलेगी नहीं मिलेगी? किसी की मैंने इंसल्ट की थी 100 साल पहले और आज 100 साल के बाद मुझे वो वापस मेरी इंसल्ट होगी नहीं होगी? मुझे पता नहीं होगी, मैं तो बहुत योग दिन रात योग कर रहा हूं। बोलो बोलो कौन सा आंसर ठीक है? जो समझते इंसल्ट होगी एक बार तो जरूर, दो बार किए दो बार जरूर होगी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जो समझते नहीं होगी वो हाथ उठाओ। देखो अगर किसी ने 10 रुपया 100 साल पहले उधार दिया, किसी को उधार दिया और वापस नहीं दिया, तो 100 साल के बाद वही आत्मा आपका बेटा बन के आएगी या पत्नी या पति बन के आएगा या बाप माँ बाप बन के आएगा और उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। 10 रुपए का कितना ब्याज हुआ 100 साल के बाद? बोलो, सिर्फ डबल करते जाना 4,18,35,040 रुपए बनता है 10 रुपए का ब्याज 100 साल के बाद। फिल्म में गीत कौन सा गाते हैं? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था और आज भी अब भी रहेगा, है ना? और कौन सा गीत गाते हैं? 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, फिर भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, नहीं? नहीं? तो 100 साल का मैं 2500 साल का ब्याज नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 100 साल का ब्याज कितना है? तो 10 रुपया तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक्यूरेट बाबा की याद श्रीमत के अनुसार रहते हो तो 4,18,35,040 रुपए माफ हो जाएगा, 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सुना? ये योग का फल है। इसलिए आपने देखा बाबा को, दादियों को, मम्मा को भी क्या करना पड़ा, शरीर में कर्म भोग आया, माफी मिली क्या? बाबा को भी खांसी थी ना, ठीक है, प्रॉब्लम आई, किंतु वो सूली भी कांटा बन गई और कांटा भी फूल बन गया। मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम आई है ना, मेरी हार्ट की भी दीवारें बहुत मोटी हो गई, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया, एरिथमियाज बहुत इरेगुलर, बहुत रेगुलर एरिथमियाज, और मेरे को कहा कि मुश्किल से 2 साल जियो, कभी भी डेथ हो सकती है आपकी। 97 की बात है, फरवरी की। आप ये कराओ ये कराओ, अमेरिका जाके इसमें इसका ऑपरेशन कराओ, AICD लगवाओ, मशीन होती है स्पेशल वो लगवाओ, ये कराओ, पर मैं तो कुछ नहीं कराया। तो सूली भी कांटा बन गई और कांटा भी फूल बन गया। जो राज्यों के अनुभव की अथॉरिटी क्या होती है वो मुझे समझ में आई, उसके पहले समझ नहीं आई थी। ज्ञान में तो मैं था 11-12 साल से, बल्कि 68 से मैं ज्ञान में था, 68 से हमारे परिवार में गीता पाठशाला थी, हमारे माता पिता ज्ञान में, जब दादियों के साथ बचपन से दादियों के साथ पांडव में जाके दादियों के साथ रहे हैं, सब मेले सब चीजें सब अटेंड किए हैं बचपन से। ज्ञान में नहीं चले, ज्ञान में तो फिर 86 में चले, किंतु रेगुलर चले, किंतु उस समय मतलब ये स्थिति थी। तो ये समझने की बात है कि रिवाइज और रियलाइज, तो रिवाइज करो और रियलाइज करो। रियलाइज माना उसकी उसका एक एक, एक लाइन को रियलाइज, अनुभव करते जाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाओ, बार बार अनुभव करो, मैं आत्मा हूं, ये हमने रिवाइज कर लिया बार बार, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, अब इसको रियलाइज करो। सचमुच शुद्ध का शुद्ध शुद्ध क्या होती है? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या होती है? ज्ञान माना सत्य की समझ, सत्य की समझ क्या है? सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, ये तो मैंने सुना, सुन लिया और सुना लिया, किंतु मैं सत्य, मैं सचमुच मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भ्रुक्तों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, और पूरी बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है उसके कंट्रोल रूम पिट्यूटरी के जंक्शन पे, यहां पे हूं, यहां से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे। अब मैं यहां आत्मा, यहां बैठ के क्या करूं? 100 अरब कोशिकाएं ब्रेन की, उनको मैं चला रही हूं, किससे चला रही हूं? क्या चीज है मेरे पास आत्मा के पास? क्या चीज है जिससे ब्रेन चलता है? ये 7 एनर्जी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इनसे चला रही हूं। ज्ञान माना क्या? सत्य की समझ, सत्य की समझ, सत्य क्या है? जब मैं आत्मा हूं, ये भी सामने वाला भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये मुझे गाली दे रहा है ये भी आत्मा है, इंसल्ट करने वाला भी आत्मा है, जो मेरी महिमा कर रहा है वो भी आत्मा है, कर्मों का हिसाब किताब है ना, ये तो देने लेने देने का हिसाब किताब है। इसको गहराई से रियलाइज करो, अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। ये मेरा बेटा क्यों बना, मेरी बेटी क्यों बनी, ये मेरी पत्नी क्यों बनी, ये मेरा पति क्यों बना, ये मेरा बॉस क्यों बना, ये मेरा नौकर क्यों, मेरे घर में नौकर क्यों बना, मेरे घर में आया क्यों बन के आई, काम करने क्यों आती है, ये मेरी सारा दिन इंसल्ट क्यों करता है, सुबह शाम जब मिलता है जब इंसल्ट करता है, ये इंसल्ट क्यों करती है बार बार मेरी, सब कुछ देने के करने के बाद भी क्यों, क्योंकि इंसल्ट की हुई है, भले दो बार की होगी पर वो कम से कम 10,000 बार तो करेगी, है ना, करेगी या करेगा, है ना, और ब्याज के साथ करेगी। और अगर मैंने बीच में बोल दिया तो डबल हो जाएगा, मान लो मैंने 10,000 गाली खानी थी और 10,000 के बाद मैंने उसमें से 2,000 खाने के बाद 8,000 रह गई और मैंने वापस जवाब दे दिया गाली का, तो क्या हुआ, 16,000 हुए सीधी, 8 का डबल 16,000 क्या हुआ, समझ रहे ब्याज कितना है, पहले डबल ओक्विट होता था, पहले डबल ओक्विट ना। तो योग क्या है, योग है जो ज्ञान हमने, जो हमारा जो हमें जो बाप से सर्व संबंध है ना हमारे, कितने हम क्या बोलते हैं, बाप से मुख्य 9 संबंध का होना, अनुभव होना चाहिए, माता पिता टीचर सतगुरु बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त, साजन सर्जन और वारिस माना बच्चा। तो ये 9 संबंध मुख्य हैं बाबा के साथ हमारे, और 9 संबंध जो है हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और हर संबंध, ये 9 संबंध तो मुख्य हैं, बाबा हमारे साथ खाना बनाने वाला रसोईया भी है, ड्राइवर भी है गाड़ी चलाने वाला, है ना, हम जो भी काम करते हैं उसमें बाबा हमारे साथ है, कपड़े धोने वाला धोबी भी है ना, क्या बोलते हैं बाबा को, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोबी बोलते नहीं बोलते, क्या कहावत है आती ना उसमें ग्रंथ में आती है ना, क्या क्या कहते हैं, मूत पलीती कपड़ दो, इसका क्या मतलब है, आत्मा के कपड़े कौन से हैं, आत्मा के कपड़े मन बुद्धि संस्कार है, तीनों मूत पलीती हो गए, मैंने विकारों से ग्रसित हो गए, विकारों में गंदे हो गए, काम विकार क्रोध में लोभ में मोह में अहंकार में, इनके बाल बच्चों में गंदे हो गए। अब बाबा आके धोबी बन के इन तीनों कपड़ों को धोता है, मन को भी धोता है और बुद्धि को भी धोता है, संस्कार को भी धोता है, आदतों को भी धो देता है ना, सब चमकार एकदम गंदे हुए सड़े हुए दाग से दाग भरे हुए, धो धो के साफ करता है ना। तो बाबा जो है हमारा, मतलब ये समझने की बात है कि एक एक संबंध की गहराई अनुभूति होनी चाहिए, और यही योग है। हर कार्य करते समय श्वासोश्वास याद कैसे करेंगे, निरंतर योगी कैसे बनेंगे, ऐसे बैठ गए, बैठ के सुबह एक घंटा आधा घंटा कर लिया, पौना घंटा कर लिया, शाम को एक घंटा बैठ, आधा घंटा बैठ गए और आधा टाइम सोए आधा टाइम जागे ना, अधिकतर तो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अमृत वेला देखो तो क्या करते हैं, सामने बैठ के योग कराओ तो पता लगता है ना, यूं बैठेंगे पहले चिंतन करेंगे, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, फिर गर्दन थोड़ी देर नीचे है ना, फिर थोड़ा अलर्ट होते, फिर इस तरफ और लास्ट में तो पूरा मुंह खोल के ऊपर से ऐसे बैठ जाते हैं ना, जैसे ऊपर से कुछ लड्डू मुंह में आने वाला है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो हमारी तो श्वासोश्वास याद है ना, श्वासोश्वास, पहले बाबा ने 8 घंटे का चार्ज दिया था, पर अभी 8 घंटे भी नहीं, बाबा कहता श्वासोश्वास होना चाहिए, हर सेकंड होना चाहिए, हर श्वास में होना चाहिए, हम 16,000 बार सांस लेते हैं एक दिन में, तो हर श्वास में बाबा की याद। एक बार बाबा दादी ने कहा था, अष्टतन कौन बनते हैं, जिनको श्वासोश्वास बाबा की याद होती है, हर संबंध में बाबा को यूज करते हैं, सिर में दर्द हो रहा हो ना आपको, तो उसमें भी बाबा को यूज करते, बाबा मालिश करने वाला भी है, पता है आपको, पता है कि नहीं पता है, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या करो, रोसिन खाओगे, क्या खाओगे, सिर दर्द की दवाई खाओगे। मुझे याद है एक बार हार्ट का प्रोग्राम था, तो मैं सारा दिन भी बिजी रहा, मतलब उस दिन क्या होता था पेशेंट हॉस्पिटल में भी देखने पड़ते थे और कैट प्रोग्राम में भी क्लासेस होती हैं, पेशेंट के चार्ट वो बनाने पड़ते हैं, फाइलें बनाओ देखो, लेक्चर भी लेने होते थे, योग भी कराना है, ये भी कराना है शाम तक, और किसी पेशेंट की तबीयत भी खराब हो जाती है बीच बीच में, कभी किसी के साथ वाले की तबीयत खराब हो जाती है, कभी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। तो मुझे याद है उस दिन सारा दिन लगा रहा, रात में भी मैं सारा दिन एक कमरे अपने कमरे में वापस आऊं तभी दूसरा को बुलाने आ जाए, फिर उधर जाऊं, फिर उधर जाऊं, फिर उधर जाऊं, 3 बज गए रात के, मतलब सारा दिन भी मैंने एक दिन टेस्ट नहीं किया, 3 बज गए कमरों में घूमते घूमते, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी हार्ट पेशेंट होते हैं, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी की तबीयत खराब, 3 बजे मैं अपने कमरे में आया। मैंने कहा बाबा उस समय तो मेरा सारा सिर दर्द हो रहा था, सारी गर्दन कमर सब रोम रोम में जो दर्द था, आंखें ऐसे मतलब जैसे भारी हो जाती है ना आंखें, बहुत थक जाती हैं, पक जाती हैं, जैसे ऐसे बैठा था मैं बाबा। तो मैंने कहा बाबा अभी तो मेरे अंदर तो आज तो जान ही नहीं है, मतलब लगता है मैं तो बस एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, मैं तो रोज उनके पास जाना होता था, रोज दादी ने, दादी का ऑर्डर था मेरे लिए कि रोज मुरली के बाद मेरे पास आके बैठना है, खाली मिलके नहीं, ओम शांति करके नहीं जाना, बैठना है मेरे पास। तो मेरा तो नियम था कि रोज मुझे बैठना ही है, 10 मिनट 15 मिनट कभी आधा घंटा भी दादी के पास बैठ रहे, दादी आती रहेगी, लोगों से मिलती रहेगी, मैं बैठा रहूंगा, सर मेरा काम था बैठे रहना। कभी कभी दादी कुछ मुझे बोलती भी थी, तो दादी ने एक दिन कहा गुप्ता जी से, बाबा से, दादी बाबा का चित्र था ना सामने ऊपर पांडव भवन में, गुप्ता जी दादी ना बाबा से ऐसे बात करते जैसे आपसे बात करते। तो कहती दादी एक दिन, कहती मुझे, मैं गया, मैंने कहा दादी आप थकती नहीं हो, आप 2000 लोगों को टोली देती हो ओम शांति पुन में बिठा के सबको, मैं 2000 बार ऐसे ऐसे करूं ना टोली को, कोई बहन, तब दादी थोड़ा यंग भी थी, तो दादी मतलब दादी को, तब तो दादी को बहन अगर आ, दादी के हाथ में टोली पकड़ा, कहती नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, तुम, मैं अपने आप करूंगी, उठा के 2000 बार आप ऐसे करो तो क्या होगा, आपका हाथ को क्या होगा, हाथ थकेगा नहीं 2000 बार ऐसे करोगे तो, है ना। दादी तो कोई ऐसे एक्सरसाइज भी नहीं करती थी, हम लोग जो थोड़ी सी करते ना ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रेचिंग भी नहीं करती थी, तो मैं दादी आप करिए, आपका हाथ नहीं तो कुछ होता है, आपका कहते कभी थक जाती हूँ ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो उस समय मेरे को वही याद आया, दादी की वो बात याद आई, मैंने कहा बाबा बाबा आप दादी की मालिश करें तो मेरी मालिश नहीं कर सकते हो, 3 बजे रात को सुबह सुबह बेड पे बैठा था, तो मेरे को अचानक क्या हुआ, अंदर शुरू हो गया ना वो इधर से ऐसा कुछ शुरू हो गया, अंदर सिर में ऐसा शुरू हुआ, फिर आंखों में इधर सब कुछ, सब रोम रोम में था दर्द, तो फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ से ऐसे होके, मतलब समझो 31 मिनट से भी कम समय में सारे शरीर में ऐसा कुछ हुआ, और मुझे फील हो रहा है सारे शरीर में फील हुआ, नंबर वाइज फील हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, फिर पैरों में से पैरों तक हुआ, और उस 1 मिनट से कम समय मेरा क्या हुआ कि सारा शरीर फूल जैसा हो गया। मैंने कोई योग नहीं लगाया कुछ, मैं सिर्फ बाबा से ऐसे फोटो थी बाबा के सामने, चित्र था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जैसे दादी दादी बोल रही थी, मुझे अचानक ही याद आया, तो बाबा दादी की मालिश करते मेरी नहीं कर सकते, और 1 मिनट से भी कम समय में सिचुएशन, और फिर सारा दिन, फिर तभी एक दूसरा पेशेंट की कॉल आई, फिर उसको उसको देखने चला गया, फिर योग 4:15 बजे योग करने चला गया। तो बाबा ऐसा है, उसके साथ एक एक संबंध की इतनी गहरी अनुभूति, डॉक्टर की अनुभूति क्या होती है, मेरे को हार्ट की तकलीफ होती है, हार्ट में एंजाइना होता, हार्ट में तकलीफ, इरेगुलर हार्ट बीट, तो मैं क्या करता था बाबा के साथ, मतलब बाबा को मैं किसी डॉक्टर को नहीं याद, किसको डॉक्टर से डॉक्टर को याद करूंगा, बाबा के साथ ना, बाबा के साथ का अनुभव, डॉक्टर का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, उसको मैं इमर्ज करूंगा। तो एक एक संबंध की गहराई की जब अनुभूति होगी ना, तो ही उसको हम कहेंगे ऐसा, एक एक लाइन बाबा की, एक एक लाइन की अनुभूति करना ही योग है। ये मुरली के एक एक लाइन के अनुभव में चले, उसकी प्राप्ति, एक एक संबंध, माँ का संबंध क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, उसकी अनुभव अनुभव करो, माँ क्या करती है और उसकी प्राप्ति क्या है, टीचर का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, ऐसे जो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, और एक एक लाइन की एक एक मतलब एक साकार मुरली, एक अव्यक्त मुरली, रोज की तो आदत बना लो, और कोशिश करो कि 69 से लेकर सारी मुरलियां, अभी फाइनल एग्जाम, अभी 6 महीने की छुट्टी मिली ना, जो छुट्टी है ये एग्जाम के पहले छुट्टी मिलती है ना, ये वाली छुट्टी है, उसके बाद एग्जाम आने वाला है, बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है, डरना नहीं, महारथी हो ना, जो डर गया समझो मर गया, है ना, डरना नहीं, भगवान आपके साथ है, कि तो उस लगन के साथ खूब लगन लगाओ, अभी तो कुछ काम तो है नहीं, खूब मुरलियां पढ़ो, खूब रिवाइज करो, अनुभव करो, अनुभव खोए रहो नशे में, आशिक माशिक वाला प्यार जो कभी भूले नहीं, आधी रात भी लगे उठ के भाग जाऊं ऊपर, कहां भाग जाऊं, सूक्ष्म वतन में भाग जाऊं, परम धाम में भाग जाऊं, है ना, ऐसी नशा होना चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। जब ऐसा बन जाएंगे तो फिर अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, है ना, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो फिर हमारे अंदर क्या होगा, हम जो है ऐसे बन जाएंगे तो निश्चय की फलक, जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान का मतलब ही क्या है हमारा, टाइम तो मेरा पूरा हो गया, मैं पूरा करता हूं। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको याद हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, एबीसीडी का इतना मनन चिंतन करो, मुरली का इतना मनन चिंतन करो, आपको अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, सत्य स्वरूप आपका क्या है, अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति चलते फिरते उठते बैठते होने लगे, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप क्या है, हमारा सत्य स्वरूप है, सत्व प्रधान स्वरूप है, और देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 36 के 36 गुण संपन्न हूं मैं, ऐसे महसूस होने लगे, 16 कला, हर गुण में 16 कला, हर गुण में 100%, ये चेहरे की खूबसूरती है देवताओं की ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी पूरे देवभान का, देवभान का अंश भी नहीं, देवभान का अंश भी नहीं, मैं देह हूं ये भी फीलिंग निकल जाए मन से, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, एक एक संबंध की अनुभूति में खोए रहे, वो है संपूर्ण निर्विकारी, मतलब पूरा शरीर कंचन काया बन गई, मन, दो काया है हमारे पास, एक मन है एक शरीर है, सूक्ष्म काया मन है और स्थूल काया ये शरीर है, 5 तत्वों का, दोनों कंचन बन गई, इसमें किसी भी कहीं भी विकार का अंश भी नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम माना नैन, कमल नैन बन गए, कमल मुख बन गया, कमल करण बन गए, कमल हस्त बन गए, ये हमारी मर्यादाएं हैं इंद्रियों की, शरीर की मर्यादा है, तो कमल के समान ऐसा बन जाए, ये ऐसे बन जाए, है ना। और फिर अहिंसा परमोधर्म, काम विकार छोड़ा, लाइट का ताज आ गया, और क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। जितना क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ते जाए, ये मैं बता रहा हूं, रियलाइजेशन कैसे करते हैं, स्मृति स्वरूप कैसे रिवाइज और रियलाइज कैसे करते हैं, इसकी गहराई में चले जाओ कि मैंने क्रोध वाला सेवा नहीं कर सकता है, लोभ वाला सेवा नहीं कर सकता है, मोह वाला सेवा नहीं कर सकता है, अहंकार वाला निस्वार्थ भाव सेवा नहीं कर सकता है, आलस्य वाला सेवा नहीं कर सकता है, अलबेलेपन वाला सेवा नहीं कर सकता है, दूसरों में अगुण देखने वाला सेवा नहीं कर सकता है, निस्वार्थ भाव की, स्वार्थ भाव की कर सकता है, चिंता भय वाला सेवा नहीं कर सकता, शक अनुमान वाला सेवा नहीं कर सकता, जल्दी चिंता, जल्दी ईर्ष्या द्वेष करने वाला, कंपटीशन कंपैरिजन करने वाला कभी सच्चे दिल से सेवा नहीं कर सकता है। तो बाबा जब इनसे विकारों से मुक्त हो जाता है, बाबा उसको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज देता है, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज दिया तो लाइट, उतना ही बड़ा रतन जड़ित ताज मिलेगा, और उतना ही हमें हमारे पूरे शरीर पर रतन जड़ित वस्त्र मिलेंगे। तो शरीर की खूबसूरती, पूरे शरीर की खूबसूरती जो बनती है वो अहिंसा परमोधम से बनती है। तो ये देखो कि मेरे को अपना स्वरूप रियलाइज, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा क्या होता था, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, और अपना कृष्ण का स्वरूप हमेशा रियलाइज होता था, दूसरों को दिखाई भी देता था, होता था नहीं होता था। तो क्या हम ऐसे बने हैं, तो ये ज्ञान स्वरूप स्थिति है। पवित्र स्वरूप स्थिति क्या है, मेरे को अपना तो रियलाइज हो गया, दूसरे का भी, भले मेरा साथी है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, उसका भी वही स्वरूप रियलाइज हो गया, और उसी स्वरूप से व्यवहार कर, इसको बोलते पवित्रता। शांति क्या है, मैं बाप से इतना कंबाइंड हूं, अपने अनादि ज्योति स्वरूप बाप से इतना कंबाइंड हूं कि इतना पास का चिंतन है, भविष्य की चिंता है, वर्तमान में बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रहा हूं। सच्चा प्रेम क्या है, जो भी आत्मा जिस भी स्वरूप में, जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है, मैं भी सबको स्वीकार करता हूं बिना शर्त के। तो चारों सर्टिफिकेट मिले नहीं मिले, 100 में निश्चय हो गया, ज्ञान स्वरूप बने तो, पवित्र स्वरूप बने तो क्या, किसमें निश्चय आ गया, बाप में निश्चय हो गया, बाप क्या करने के लिए आया, हमें पावन बनाने के लिए आया, और शांति आ गई तो, असोचता बाप से कंबाइंड हो गए तो ड्रामा में निश्चय हो गया, और सबको एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी शर्त के, दिल से सम्मान स्वीकार कर लिया तो परिवार में निश्चय हो गया। 4 सर्टिफिकेट मिले नहीं, स्व से संतुष्ट हो गए, बाप संतुष्ट हो गया, ड्रामा संतुष्ट हो गया, और परिवार संतुष्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये 4 सर्टिफिकेट मिले तो कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोद में पहुंच गए, वहां बाबा की गोद में अतिंद्र सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। आनंद माना अतिंद्र सुख माना इच्छा मात्र में अविद्या संतुष्टता, इच्छाएं खत्म हो गई, बाप की याद में लवलीन हो गए, फिर आग की आशक्तियां आनी शुरू हो गई। तो ऐसे जब एक एक चीज की गहराई में जाओगे, हम जाएंगे, मैं भी जाता रहता हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एकदम हर समय बाबा खाना आया, बाबा 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 मुझे खिला रहा है, मैं अपनी थाली लेकर सूक्ष्म वदन में चले जाओ, बाबा मुझे खिला रहा है, मैं बाबा को खिला रहा हूं। आपको सैर करनी है सूक्ष्म वदन में चले जाओ, बाबा की दिल तक पे चले जाओ, वहीं सैर कर लो, बाबा की याद में सैर करो, बातें करते नहीं, बाबा की याद, बस फरिश्ते के माफिक सैर, और कुछ करने की आवश्यकता, ये भी करने की आवश्यकता नहीं, यूं भी करने की आवश्यकता नहीं, बस बाबा की याद में फरिश्ता सैर करो। आपको कोई मसल थोड़ी बनाना नहीं है कि मोटे मोटे करने हैं, ऐसे कुछ ऐसा करने, ऐसे बनाना, कुछ नहीं बनाना, बनाना है क्या, बनाना मसल्स बनानी ऐसा बन, राइट। तो रिवाइज अपना कोर्स, 48 साल का कोर्स हो, 5 साल का कोर्स, रोज की मुरली, और अभी टाइम है, खूब मुरलियां पढ़ो, खूब अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, क्योंकि लाइन को रिवाइज करो। ज्ञान है सत्य की समझ और सत्य को अनुभव करना, मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है, और मैं आत्मा हूं ये अनुभव करना, इसका अनुभवी मूर्त बन जाना, यही योग है, इतना ही आपोषक। ओके, ओम शांति। तो सबके समय कौन बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। अभी अभ्यास करो इसका गहराई से, है ना, और हर समय करो, निरंतर करो, चेक करो, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, क्या है, अपनी मन बुद्धि शुद्ध हो गई, लाइट की बन गई, ज्ञान से भर गई, पवित्रता शांत सातों नदी से भर गई, तो हम पवित्र बन गई, और हम सूक्ष्म वतन माना बाप दादा की गोद में, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले उसने मन बुद्धि को शुद्ध बनाया, पावन बनाया, पावन तत्व प्रधान बनाया, तो बाप दादा की दिल में जाके बैठ गए, दिल माना उसकी गोद में जाके, इसे ही सूक्ष्म वतन कहते हैं। और हमें बाप दादा की गोद में जाना है, तो हमको भी ब्रह्मा बाबा के समान फॉलो करके उनके साथ श्वासों श्वास उनको करके, तब हम बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, सच्चा अतिंद्रिय सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं, शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, और फिर वहां से फिर परम धाम जा सकते हैं, वहां से भी मन उसको भी बिंदी लगा के, बिंदी बन के परम धाम, बिंदी बात से जाएंगे, बिंदी बात से कनेक्ट हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो चलते फिरते रहेंगे बाद में, तो हमारे सारे विक्रम विनाश, राइट, मतलब मर्ज हो जाएंगे, विनाश का मतलब मर्ज हो जाएंगे, फिर 5,000 साल के बाद वापिस इमर्ज होंगे, राइट। ओम, चलिए 2 मिनट बाबा को पावरफुल याद कर, एकदम ऊपर चले जाओ।